केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए अब चलते हैं कुछ आध्यात्मिक यात्रा की तरफ। आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा बढ़ चुके हैं, और जब हम लोग प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती है, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी और प्राइस में भी, और उस समय क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम किसे चुने और कौन सी चीज जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। और ऐसी जब कंफ्यूजन भरी स्थिति आती है, और उस स्थिति में यदि अगर बैच के द्वारा साथ ही साथ ट्री जो हमारा तुलसी प्लांट है उसके द्वारा स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय दीदी जी का परिचय देना, सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, क्योंकि दीदी जी का परिचय और साथ ही साथ उनके कार्यों का जो वर्णन है वो अपरंपार है। लेकिन फिर भी गागर में सागर भरते हुए मैं आप लोगों के बीच दीदी जी का परिचय रखना चाहूंगी। हमारी आदरणीय राजयोगिनी दीदी जी का जन्म कर्नाटक के एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आपका रुझान आध्यात्म के तरफ था। समाज के लिए, समाज के उत्थान के हेतु कुछ ना कुछ करना है, ये उनकी तीव्र इच्छा थी। और इसी में आगे बढ़ते हुए आदरणीय दीदी जी ने 1992 में अपना जीवन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। लौकिक रूप में भी यदि अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी दीदी जी उच्च शिक्षा विभूषित है, उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री उत्तीर्ण की है। ये डिग्री उन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से की है। इसके साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स में तो दीदी जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लिविंग वैल्यूज, इन विषयों में दीदी एक्सपर्टीज है, और इनसे संबंधित बहुत सारे सत्रों का दीदी जी द्वारा बहुत सारी जो आत्माएं हैं उनको मार्गदर्शन किया है और उनको सही रास्ता बताया है। आदरणीय दीदी जी द्वारा बहुत सारे रेडियो टेलीविजन शो में यूथ को और जो बहुत सारी जो आत्माएं हैं उनको गाइडेंस दिया है। दीदी जी हमारे कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में पारंगत है। साथ ही साथ सेवा निमित्त सिर्फ भारत में ही नहीं, आदरणीय दीदी जी द्वारा यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड इत्यादि देशों में सेवा निमित्त जो है उन्होंने यात्रा की है, और दूर दूर तक बाबा का जो संदेश है वो वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और वर्तमान समय में दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ एजुकेशन विंग है। तो आप सोच सकते हैं कि आप सभी आत्माएं कितनी भाग्यशाली है कि आज आपके सामने, और जब आप ऊपर साइट सीन में जाएंगे, आप लोग में से कुछ तो जानते ही होंगे, ज्ञान सरोवर में, तो आदरणीय दीदी जी ज्ञान सरोवर में वह जो है जहाँ रिट्रीट्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे जो है दीदी का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, और दीदी जी के सान्निध्य में ही ये सारी जो सेवाएं हैं वहां पे और बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो चलिए अब बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया है, तो मैं आदरणीय दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आज के सत्र का प्रारंभ करेंगी। ओम शांति।
दो मिनट मेडिटेशन।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवा से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ, तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुबह के सत्र में हम मेडिटेशन सीख रहे हैं। कल भी कुछ हद तक उसके बारे में समझा और प्रैक्टिस भी किया। मेडिटेशन करने के तीन स्टेप्स है। पहला स्टेप है खुद को जानना, खुद को यथार्थ रीति से पहचानना, खुद का खुद के साथ कनेक्शन जोड़ना, जो कल हम सबको समझ में आया। तो आज के सेशन में सेकंड स्टेप, परमात्मा का यथार्थ परिचय क्या है, उनके बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। और तीसरा स्टेप है जो कल देखेंगे, वो है आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए। तो आज के सेशन जो सेकंड स्टेप है, परमात्मा का यथार्थ परिचय, परमात्मा का परिचय पाना क्यों जरूरी है, परमात्मा की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले अवश्य ये है कि मेडिटेशन करने के लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तो जिसके कारण से परमात्मा का परिचय पाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, why is it there's a necessary to understand God, परमात्मा के बारे में समझने की क्यों जरूरत है। ठीक है, मेडिटेशन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में कुछ लोगों की मान्यता ये है, वर्क इज वर्शिप, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, सबका सबको सुख देते चलो, तो सुख पाते जाएंगे। तो यहां परमात्मा की जरूरत क्या है, आपको क्या लगता है, आपको परमात्मा की आवश्यकता है क्यों, क्यों जरूरत है? सुख शांति के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए परमात्मा को समझना जरूरी है, अपने आप को पहचानने के लिए खुद के साथ समय बिताए, खुद को समझिए, तो परमात्मा की क्यों जरूरत है? परमात्मा की क्यों जरूरत है? हा? सही गलत का निर्णय पाने के लिए क्या खुद के पास वो समझ नहीं है? नहीं है समझ, है ना। जो एक अननोन टेरिटरी में जब जाते हैं, अननोन कोई भी एक शहर में जाते हैं, आजकल सब इंटरनेट का जमाना है तो क्या यूज करते हैं हम? जीपीएस यूज करते हैं, है ना। क्योंकि हमें रोड पता नहीं है तो कोई डायरेक्शन बताने वाला चाहिए। तो पुराने जमाने में हम क्या करते थे, जहां जीपीएस नहीं था तब हम पूछ पूछ करके जाते थे, फलाना घर कहाँ है, कहाँ जाना है। तो फिर रास्ते में जो भी दुकान होते थे, व्यक्ति होते थे, उनको पूछ के जाते थे रास्ता समझने के लिए। लेकिन आजकल तो हम जीपीएस यूज करते हैं। क्यों जीपीएस यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है, अननोन टेरिटरी है। तो ऐसे ही कहीं चीजें अपने जिंदगी के बारे में खुद से ज्यादा खुदा को पता है, परमात्मा को पता है। तो उनके साथ कनेक्शन जोड़ने से हमें गाइडेंस मिलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ हद तक हमें पता है, समझ है। लेकिन समझ होते हुए भी कई बार अंदर वो ताकत नहीं होता है सही कर्म करने की। हमें पता है झूठ नहीं बोलना है, हमें पता है कई चीजें नहीं करना है, लेकिन मालूम होते हुए भी हम उसको रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को नहीं रोक पाते वो कर्म करने से, क्योंकि आंतरिक शक्ति की कमी होती है, है ना। तो यह एक है समझ, गाइडेंस हमें चाहिए कहाँ जाना है क्या करना है, और दूसरी बात है शक्ति की जरूरत है आत्मा को। दोनों प्राप्त होगा परमात्मा से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और परम आत्मा कहते हैं, है ना। परम आत्मा माना सुप्रीम सोल, हर चीज में वो परम, वो सागर है, वो अता है, अनलिमिटेड है। तो इसके कारण से अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से परमात्मा को पुकारते आए हैं, पूजते आए हैं, अपने ही तरीके से पूजते आए हैं। तो जब भी हमने पूजा, जब भी हमने परमात्मा को अलग अलग तरीके से हमने याद किया, जरूर हमें कुछ ना कुछ मिला जरूर। जब पूजा के जगह पर हम जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या फिर मॉस्क में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें जरूर वो वाइब्रेशंस, वो शांति, वो एक प्रकार से अंदर जो आंतरिक सुख है वो अनुभव जरूर कर मिलता है, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वहां पूजा घर में जब तक है तब तक तो हमें बहुत शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर कर्म करने के लिए जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं तो फिर वो आंतरिक शक्ति की कमी होने के कारण से फिर से वो आत्मा जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ न होने के कारण से आत्मा 100% रिचार्ज यहाँ नहीं हो रहा है। तो 100% रिचार्ज होने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन की जरूरत है परमात्मा के साथ। तो इसीलिए परमात्मा को के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर एड्रेस ही पता नहीं है तो लेटर कैसे डालेंगे, है ना। तो एड्रेस पता होना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह समझना जरूरी है। यह कहानी आप सबको मालूम होगा कि 5 सूरदास थे जो उनको आंख बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद उनको कहा हाथी को टच करके हाथी को डिस्क्राइब करना। तो एक व्यक्ति ने हाथी के सूंड को टच किया और उसने कहा ये तो हाथी तो सांप की तरह है। जिसने हाथी के पैर को टच किया तो उसने कहा हाथी तो एक खंबे की तरह है। जिसने हाथी के पीठ को टच किया तो उसने कहा हाथी तो एक दीवार की तरह है। और जिसने हाथी के पूंछ को टच किया उसने कहा हाथी तो रस्सी की तरह है। और जिसने हाथी के कान को टच किया तो उसने कहा हाथी तो एक पंखे की तरह है। अलग अलग लोग उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की अपने ही एक लिमिटेड बुद्धि से, लेकिन सभी को भी इकट्ठा करे तो भी वो हाथी हाथी जैसा नहीं लगता। दीवार, रस्सी, पिलर, सांप, सबको अगर इकट्ठा करे तो भी वो हाथी की तरह दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? समय प्रति समय मनुष्य आत्माएं अपने ही समझ के आधार से परमात्मा को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। जो अथा है, अनंत है, सागर है, और इंसान जो आत्माएं हैं उनकी जो बुद्धि है बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि केवल वर्तमान को मनुष्य आत्माएं देख सकती है, त्रिकालदर्शी वो आत्माएं नहीं हो सकती। तो लिमिटेड जो बुद्धि वाले आत्माएं एक बेहद परमात्मा को डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश तो की, लेकिन यथार्थ उसका उनका परिचय वो नहीं दे पाए, क्योंकि अपने ही समझ के आधार से। जिसने जैसे पैर को टच किया उसने खंभा बोला हाथी को, ऐसे ही हर एक इंसान जो उस एरिया को देखा, उस थोड़ा भी थोड़ा अनुभव किया, एक ड्रॉप की तरह जो उन्होंने अनुभव किया परमात्मा को, उनको उस रीति से डिस्क्राइब करना शुरू किया। लेकिन पूर्ण सच क्या है वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आत्माओं में बहुत सारे आत्माएं हैं, कैटेगरीज हैं आत्माओं में। जो पाप कर्म करते हैं उनको पाप आत्मा कहते हैं, जो दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहते हैं, और जो महान कार्य करके गए हैं इस संसार में उनको महात्मा कहते हैं, और जो आकर के अलग अलग धर्म स्थापन किए, चाहे वो जीसस क्राइस्ट है, महात्मा बुद्ध है, महावीर जी है, या फिर गुरु नानक जी है, तो अलग अलग धर्म उन्होंने आकर के स्थापन किया, उनको धर्म आत्मा कहा। और देव आत्माएं जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, उनको देव आत्मा कहा। और भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन होता है। ये सभी आत्माओं की कैटेगरी है, लेकिन सब धर्म वाले क्या कहते हैं? परमात्मा कितने हैं? परमात्मा कितने हैं? एक है, गॉड इज वन कहते हैं, भगवान एक है, परमात्मा एक है। तो उस एक परमात्मा का परिचय क्या है फिर? क्योंकि एक परमात्मा अगर एक है, उनका यथार्थ परिचय भी एक होना चाहिए। वो एक परिचय हम कोशिश करके देखने की कोशिश करेंगे। पर कोई कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन जब हम ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा को हासिल करना एक डिग्री नहीं है, परमात्मा का अलग अस्तित्व है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन आत्माओं में इतनी सारी कैटेगरी है, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा है। जैसे जैसे आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करती जाती है तो वैसे वैसे उस कैटेगरी में फिट होते जाते हैं। लेकिन सभी आत्माएं उस परमात्मा को अलग अलग रीति से पूजना, पुकारना और याद करना शुरू किया है। तो उस एक परमात्मा का यथार्थ परिचय क्या है? उनके लिए, उसके लिए पांच पैरामीटर्स हैं, पांच मापदंड है जिसके आधार से हम समझने की कोशिश करते हैं उनका गुण और कर्तव्य क्या है। सबसे पहली बात है, वो सर्वोच्च है, ही इज हाईएस्ट ऑन हाई, उनसे ऊंचा कोई और हो नहीं सकते, सो सर्वोच्च है। दूसरी बात है, वो सर्वज्ञ है, ही इज द नोअर ऑफ ऑल, वो सब कुछ जानने वाला ज्ञान का सागर है। तीसरी बात है, वो सर्वोपरि है, सर्व चक्करों से वो परे है, जन्म मरण के चक्र से परे है, कर्म अकर्म विकर्म के चक्र से परे है, दुख और सुख के चक्र से परे है, सर्वोपरि है। और चौथी बात है, वो सर्व का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, सर्व गुणों का स्रोत है, वो दाता है। और पांचवी बात है, सर्व धर्म माननीय है, ही इज एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स। ऐसा नहीं कि वो केवल हिंदुओं का परमात्मा है, नहीं, हर धर्म वाले ये माने ये हमारा भगवान है, परमात्मा है। ये पांच पैरामीटर्स के आधार से हम आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है सर्वोच्च। किन किन बातों में वो सर्वोच्च है? चार बातों में वो सर्वोच्च है। सबसे पहली बात है, वो सर्व गुणों से सर्व गुणों में वो सर्वोच्च है, वो सागर है, अथाह है, वो बेहद है। हम आत्माओं के लिए कहते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे बहुत शांति के वाइब्रेशंस आते हैं, ये व्यक्ति बहुत हम्बल है, ये व्यक्ति बहुत हमेशा खुश रहता है। थोड़ा बहुत एक एक गुण थोड़ा थोड़ा हम सभी के अंदर है, लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा के अंदर सर्व गुण बेहद है, सागर समान है। तो इसलिए जब भी हमें कुछ परेशानी होती है तो किसको हम याद करते? हाँ, पहले हम इंसानों को, किससे हम मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान से हमें जब मदद नहीं मिलता, हम कहाँ जाते हैं? परमात्मा के पास जाते हैं, भगवान को याद करते, कोई मेरे मुझे मदद करने वाले नहीं है, हे भगवान तुम ही एक सहारा हो। क्यों भगवान के पास जाते? क्योंकि परोक्ष अपरोक्ष हमें पता है वो सर्व गुणों का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, शक्तियों का भंडार है, तो उसमें सर्वोच्च है, सर्व गुणों में वो सर्वोच्च है परमात्मा। और दूसरी बात है, उनका कर्तव्य भी सर्वोच्च है। कौन सा कर्तव्य करते हैं? कई बार ये भी कहने में जाता है कि परमात्मा की इच्छा से कुछ नहीं हिलता, पत्ता पत्ता हिलाने वाला भी भगवान है। इसके लिए क्या कहेंगे? पत्ता पत्ता हिलाने वाला भगवान है। परमात्मा का कर्तव्य क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप क्या समझते हैं? पत्ता पत्ता हिलाने वाला भगवान है, उनकी इच्छा से कोई कुछ नहीं हिलता, क्या कहेंगे आप सब? क्या कहेंगे? मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ में कितने पत्ते हैं? और कितने सारे पेड़ हैं इस कैंपस के अंदर ही, कितने सारे पेड़ हैं माउंट अबू में, कितने सारे पेड़ हैं पूरे संसार में। अनगिनत पत्ते हैं। आ हिलाने का काम परमात्मा करेंगे, जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंपनी है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या है, वो अपने कैबिन में बैठते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जो मेजर डिसीशंस है वो लेते हैं। अगर छोटा सा मशीन अगर खराब होता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन आता है? छोटा सा मशीन अगर खराब है उसको ठीक करने के लिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाएंगे, मैकेनिक को बुलाएंगे। तो हर डिपार्टमेंट के कोई एम्प्लॉइज होंगे, तो उनके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो अलग अलग कर्म करने के लिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अलग अलग लोगों को लिमिट बनाया जाता है, लेकिन सबके ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, केवल मेजर डिसीशंस लेने के लिए, छोटी मोटी चीजें देखने के लिए वो नहीं है। ऐसे ही पूरे संसार के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पूरे संसार के मैनेजिंग डायरेक्टर वो परमात्मा है, और छोटी छोटी चीजों के बारे में उनको डिसीशन लेने की जरूरत नहीं है। वो वही कर्म करते हैं जो और कोई नहीं कर सकते, वही वो करेंगे, है ना। जो इंसान जो कर्म कर सकते परमात्मा क्यों करे? जो इंसान कर्म नहीं कर सकते वही कर्म परमात्मा करते हैं। और जो भी हमारे लाइफ के डिसीशंस है वो भगवान ने हमें फ्री विल दिया हुआ है, वो अपना डिसीशन है, अपना फ्री विल है। हाँ, परमात्मा है गाइडेंस देने के लिए, क्या सही है क्या गलत है वो बताने के लिए। अगर हम चाहे तो गाइडेंस हम ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। परमात्मा उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे कभी भी। अगर हम गाइडेंस चाहते हैं तो परमात्मा से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का कर्तव्य क्या है? दो ही कर्तव्य है परमात्मा का, दुख हरता सुख करता है परमात्मा। कई बार हम ये देखते कहते हैं दुख देने वाला भी परमात्मा है, ऐसे कहते हैं। आप क्या कहते हो? दुख देने वाला भी परमात्मा है? जब बहुत परेशान हो जाते हैं जिंदगी में, फिर भगवान के पास जाकर के हम लड़ते हैं, हे भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने ऐसा कर्म क्या किया था, कि तुम्हारे क्या गलती की थी, क्या ऐसा किया था मैंने जो ये इतना बड़ा दुख मुझे मिला है, क्यों दिया मुझे इतना दुख? क्या परमात्मा दुख देते हैं? क्या कहेंगे? दुख देते हैं? मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आप माता पिता हैं, क्या माता पिता अपने बच्चों को दुख देते हैं? सोच भी नहीं सकते, भले वो बच्चे कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हो, कितने भी रास्ते से भटके हुए क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माता पिता के दिल से उनके प्रति दुआएं निकलती है, वो हमेशा सुखी रहे, अच्छे रहे, यही दुआएं निकलती। कभी भी वो दुख नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को। जो इंसान अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते, तो परमात्मा जो प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, वो कभी भी अपने बच्चों को दुख कभी नहीं दे सकते। वो दुख हरता सुख करता है। लेकिन दुख कैसे हम अनुभव करते हैं जीवन में? किसके कारण से हम अनुभव करते हैं जीवन में? अपने ही कर्मों के फल के रूप में हम दुख अनुभव करते हैं। किसी को दुख दिया होगा इस जन्म में या पिछले जन्मों में, वो कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो कभी ना कभी हमारे सामने जरूर आता है, जब भी हम दुखी होते हैं हमें याद करना चाहिए कि कहीं ना कोई हमारे जो कर्म का फल है अभी चुक्त हो रहा है, हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना भगवान दुख देने वाला है, नहीं, वो सुख का सागर है, दुख हरता सुख करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य भगवान का वो है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला पवित्रता का सागर परमात्मा है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है परमात्मा। क्योंकि पतितों को पावन कौन बना सकता है, जो संपूर्ण पावन है वही पावन बना सकते हैं। तो इसलिए वो संपूर्ण पावन है और सदा पावन है, कभी भी वो पतित नहीं बनते हैं। तो इसीलिए वो पतितों को पावन बनाने करने वाला पवित्रता का सागर है। और तीसरी बात में सर्वोच्च है धाम में, धाम मना घर, इसलिए हम गाते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम हम कहते हैं। जब भी हम भगवान को याद करते हैं, जब मंदिर नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, तो अचानक रास्ते में चलते हुए हम भगवान को याद करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, है ना, ऊपर वाला जाने कहते हैं। जब हम कहते हैं ऊपर वाला जाने तो क्या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाला जाने, हाँ नहीं, ऊपर वाला जाने मतलब हमको पता है कि परमात्मा कहीं ऊपर रहने वाला है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, धाम कौन सा है, ऊंचा ऊपर वाला, ऊपर कौन सा है धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम। इसलिए कहते ना, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, सभी आत्माओं का परमानेंट एड्रेस वो परम धाम है। टेम्पररी एड्रेस हम आत्माओं का यहाँ है, परमानेंट एड्रेस वहां है, वहां से हम आए हैं, कर्म कर रहे हैं, और एक दिन इस टेम्पररी एड्रेस को छोड़ना पड़ेगा और फिर दूसरा टेम्पररी एड्रेस हमें मिलेगा, लेकिन परमानेंट एड्रेस तो हमारा परम धाम है, परमात्मा का घर। सो सब आत्माओं का घर परम धाम है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कण कण में परमात्मा रहते हैं, कण कण में कहीं भी सब सर्वव्यापक है परमात्मा। उसके लिए एक तरफ हम कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, परम धाम उसका घर है, लेकिन दूसरे तरफ हम कहते हैं पर कण कण में परमात्मा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे। ये दो थियोरीज हो गए ना, दो थियोरीज हो गए ना। तो कण कण में ईश्वर है, अगर कण कण में ईश्वर होते तो फिर अभी इंसान में भी, मनुष्यों में भी अगर परमात्मा होते, आप सभी लॉयर्स और जजेस हैं, आपको पता है इतने सारे क्राइम्स बढ़ता जा रहा है इस संसार में, अगर इंसान में परमात्मा होते तो फिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है। वो तो प्रेम का सागर है, कभी भी मन से भी वो दुख नहीं दे सकते परमात्मा को। वो कर्म करना छोड़िए, कर्म के द्वारा दुख तो छोड़िए, मन से भी वो दुख नहीं दे सकते। तो इससे साबित होता है इंसान में वो परमात्मा नहीं हो सकता। और गंदगी है, नेगेटिव चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जो जड़ चीजें हैं उसमें परमात्मा है नहीं है, कि वो तो सर्वोच्च है, सर्वो सर्वश्रेष्ठ है। इन सभी जड़ चीजों में भी परमात्मा कैसे हो सकता है। लेकिन हमने, हम अपने बुजुर्गों ने क्यों कहा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, क्योंकि जब पाप कर्म बढ़ना शुरू हुआ द्वापर युग से लेकर के, तब बड़े बुजुर्गों ने, पंडितों ने, अपने साधु संतों ने कहना शुरू किया, एटलीस्ट ये डर रहे कोई तो मुझे देख रहा है, इसीलिए कहना शुरू किया भगवान आपको देख रहे, गॉड इज वॉचिंग ऑन अस। तो इसीलिए एटलीस्ट डर के कारण से हम पाप कर्म करना छोड़ दे, इसके कारण से ये बताना शुरू किया। एक तो डर बिठाने के लिए, और दूसरी बात है जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हर तरफ वही नजर आते हैं। भक्त मीरा को गिरिधर गोपाल हर तरफ नजर आ रहे थे, गोपियों को श्री कृष्ण हर जगह पर नजर आ रहे थे। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, मन में उन्हीं के बारे में सोचने के कारण से हर जगह पर वही नजर आते हैं। सो इट इज नॉट अ थियोरेटिकल ट्रूथ बट इट इज एन इमोशनल ट्रूथ, भावनात्मक सत्य है ये। अगर मैं भगवान को सब जगह देखूं, हर व्यक्ति में मैं देखने की कोशिश करूं, तो फिर हर व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार बहुत सम्मान पूर्वक होगा। भावनात्मक सत्य है लेकिन थियोरेटिकल ट्रूथ वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब इस भारत में अति धर्म की ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ। आता हूँ माना इसका मतलब है यहाँ उपस्थित नहीं है, ऊपर से वो आते हैं। इसीलिए ऊंचा तेरा नाम और ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। और चौथी बात है परमात्मा सभी के माता पिता, टीचर और सदगुरु है। इसीलिए जब हम कीर्तन करते हैं कहते हैं ना, आप मात पिता बंधु सका सब आप हो, ये गायन तो करते हैं लेकिन फिर हम प्रैक्टिकली उनके साथ वो संबंध जोड़ते हैं, वो अपने आप से पूछने की जरूरत है। लेकिन परमात्मा को कोई पेरेंट नहीं है, उनके कोई मात पिता नहीं है, उनके कोई टीचर और सदगुरु नहीं है, लेकिन परमात्मा सभी के मात पिता, टीचर और सदगुरु है। लेकिन किस नाते से? एक परिवार में हस्बैंड वाइफ बच्चे सभी मिलकर के ये आरती कर रहे हैं और कह रहे हैं आप मात पिता बंधु सखा सब आप हो, लेकिन पति वो गा रहे हैं तो पत्नी तो ये तो नहीं गा रहे हैं कि आप मेरे सास ससुर हो, है ना, और बच्चे ये नहीं गा रहे हैं कि आप तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो, सभी ये कह रहे हैं कि आप मात पिता बंधु सखा हो। तो शारीरिक, इसका मतलब है कि शारीरिक नाते से वो नाता नहीं है लेकिन आत्मिक स्वरूप में सभी आत्माओं का मात पिता है। शारीरिक मात पिता हर एक के अलग अलग है, है ना, लेकिन उसके अलावा परमात्मा जो है सब आत्माओं के मात पिता, टीचर और सदगुरु है, सर्वोच्च है। तो और सेकंड पैरामीटर है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, ज्ञान का सागर है। सब कुछ जानने वाला का मतलब क्या है? क्या वो अंतर्यामी है? अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, मन के अंदर क्या चल रहा है जान सकते हैं, लेकिन वो बैठ करके देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, लेकिन हम अपने मन में नेगेटिव भी चल रहा है, पॉजिटिव भी चल रहा है, वेस्ट भी चल रहा है, खिचड़ा भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो इतना सर्वोच्च है, मेरे मन में क्या चल रहा है बैठ करके देखने की उनको जरूरत नहीं है, उनको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उनकी जरूरत है। इसलिए जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है गाइडेंस की, शक्ति की, समझ की, तो फिर मुझे वहां जाना है, उनके साथ कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है, लेकिन उनको मतलब यहाँ फिर जानने की कोशिश नहीं है, क्योंकि वो जो जानी जानन है सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है माना सर्वज्ञ, माना त्रिकालदर्शी है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को वो जानते हैं। हम सभी केवल वर्तमान को जानते हैं, लेकिन मेरे बारे में परमात्मा, मेरे पूर्व जन्म क्या थे और भविष्य क्या होने वाला है, सब कुछ वो जानते हैं, पूरे काल चक्र को वो जानते हैं। तो इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। और तीसरा पैरामीटर है वो सर्वोपरि है, सर्व से परे है, सर्व से परे है माना काल चक्र से परे, जनन मरण के चक्र से परे, कर्म अकर्म विकर्म से परे। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा कर्म करते हैं तो फिर उसका सुख भोगना पड़ेगा, तो फिर वो साइकिल में आना पड़ेगा, सतो रजो तमो में आना पड़ेगा, फिर वो चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो नहीं आ सकते काल चक्र में, वो नहीं आ सकते दुख सुख के चक्र में, वो नहीं आ सकते जनन मरण के चक्र में भी, वो नहीं आ सकते। क्यों जन्म मरण के चक्र में नहीं आ सकते? क्योंकि अगर जन्म लिया कि माँ के कोख का आधार लेना पड़ेगा, तो माँ का कोख का आधार लिया तो फिर माता पिता उनके वो माता पिता हो गए, तो सर्वोच्च परमात्मा सर्वोच्च होने के कारण से वो जनन मरण के चक्र में भी नहीं आ सकते। तो इसलिए उनके उनको कहा वो अजन्म अभोक्ता और अकर्ता है। अजन्म माता पिता के आधार से वो जन्म नहीं लेते, अजन्मा है वो, अभोक्ता दुख सुख को वो नहीं भोगते हैं, वो अभोक्ता है, अकर्ता कर्म भी वो नहीं करते, लेकिन करण करावन हार हो वो है, कराते हैं हमसे लेकिन करते कुछ भी नहीं है। इसीलिए उनको गॉड कहते हैं, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। वो जनरेटर स्थापना पालना और विनाश कराते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा, वो खुद नहीं करते, इसीलिए वो अकर्ता कहते हैं। ये चक्र में क्यों नहीं आते? वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, वो कारण क्या है इस चक्र में न आने की? अगर कोई कीचड़ में गिर जाते हैं कौन उसको ऊपर ले सकते हैं? जो उससे ऊपर है वही कीचड़ से उस व्यक्ति को खींच सकते, वो कीचड़ में खुद है तो उसको दूसरे व्यक्ति को वो कीचड़ से बाहर नहीं ले सकते हैं। खुद पतित है तो दूसरों को पावन कैसे बना सकते हैं? तो इसीलिए परमात्मा इस चक्र में नहीं आते, पतित नहीं बन सकते, क्योंकि सभी पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला, कीचड़ से ऊपर उठाने वाला वो परमात्मा है। इसीलिए वे सबसे परे रहना, चक्रों से अलग रहना, ऊपर रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। और चौथा पैरामीटर है वो सर्व का स्रोत है, सोर्स है, और फिर वो दाता है, वो लेता कुछ नहीं है। जब भी हमें कुछ शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, हम इंसानों में तो ढूंढते आए हैं, लेकिन इंसानों में तो वो नहीं मिलता है, क्योंकि सबका स्रोत है परमात्मा। तो इसीलिए शांति से जब परमात्मा को याद करते, यहाँ फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, तो यहाँ मांगने की जरूरत नहीं। जैसे सागर, सागर है तो सागर के किनारे हम जाकर के पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली ठंडी हवा हमें महसूस होता है, और सागर से 100 किलोमीटर दूरी पर खड़े होकर के अगर कहे हे सागर मुझे ठंडी हवा दो, वो मिलता है? सागर से हम 100 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो मिलेगा ठंडी हवा? मिलेगा? नहीं मिल सकता। ठंड सागर की ठंडी हवा खाना हो तो वहां जाकर के खड़े होना पड़ेगा, नजदीक जाना पड़ेगा, है ना। तो वहां नजदीक जाने के बाद फिर मांगने की जरूरत नहीं है, हे सागर मुझे ठंडी हवा दो, केवल वहां जाकर के खड़े होने की जरूरत है। बस ऐसे ही केवल मैं याद करूं परमात्मा को तो वे शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वहां मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, हे भगवान मुझे शांति दो, शक्ति दो, प्रेम दो, वो अनुभव वो मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए, और वो हमेशा दाता है, वो लेने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने लालच, अपने स्वार्थ के लिए लालच दिखाते हैं। भगवान वो खुद सागर है, देने वाला है, दाता है, फिर भी हम क्या कहते हैं, मंदिर में जब कोई परेशानी आती है तो फिर क्या कहते हैं, हे भगवान ये मेरी इच्छा पूर्ण कर दो तो फिर मैं 101 नारियल फोड़ूंगा। क्या भगवान को आपकी 101 नारियल की आवश्यकता है? और ये कंडीशन है, ये काम कर दो तो मैं ये दूंगा, काम नहीं होगा तो नहीं दूंगा। चाहे अलग अलग रूप से लालच दिखाएंगे भगवान को, है ना, चाहे पैसों के रूप में या फिर नारियल के रूप में, दिए के रूप में, जो जो मन्नतें मांगते हैं कि आप ये काम कर दो तो मैं आपके तीर्थ पर विजिट करूंगा, मैं आपके धाम पर आऊंगा, ये मंदिर में जाऊंगा, ये मन्नत मांगते हैं ना, ये काम हो जाए तो मैं जरूर ये मंदिर जाऊंगा, है ना। तो क्या ये काम नहीं होगा तो नहीं जाएंगे आप, परमात्मा को याद नहीं करेंगे? ये कंडीशंस डालते हैं, है ना। देने वाला दाता को हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये लालच दिखा रहे हैं, हम ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को। ये ब्राइबरी चलेगा या नहीं चलेगा? केवल ब्राइब कौन सा चाहिए परमात्मा को? प्यार, बस केवल प्यार से अगर याद किया और उनके श्रीमत पर हम चलना शुरू किया, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करना शुरू किया, तो हम अति प्यारे हो जाएंगे उनके, तो हम अपने सब जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। यहां मांगने की जरूरत नहीं है या फिर लालच दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्रोत है, वो तो दाता है, दाता को देने वाला। और क्या देते हैं, दाता, विधाता, वरदाता कहते हैं परमात्मा को। भाग्य बनाने वाला भगवान है। भगवान का नाम क्यों पड़ा उनको? भगवान कौन है? भगवान वो है जो सभी आत्माओं का भाग्य बनाते हैं, वो ऐसे इतना श्रेष्ठ है, भाग्य बनाने वाला भगवान है, तो उनको हम क्या देंगे, वो सर्वोच्च है। और पांचवें पैरामीटर है, सर्वधर्म माननीय होना चाहिए, ही हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स। तो अलग अलग धर्म वालों को हम अब देखते हैं कि जरूर हर धर्म में परमात्मा को अलग अलग रीति से याद करते आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरे धर्मों को, क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द चाइल्ड ऑफ सन ऑफ गॉड कहा। जीसस क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा गॉड इज लाइट, और उन्होंने समाज को प्यार और कंपैशन, करुणा का पाठ पढ़ाया। जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था, उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया था, उन्होंने यही कहा, हे भगवान इनको ये पता नहीं है क्या कर रहे हैं, सभी को क्षमा करना, they don't know what they are doing. Please forgive them. तो किसको कहा उन्होंने? भगवान को कहा. Hey God, they don't know what they are doing. है ना? तो भगवान को याद किया. इसका मतलब है उन्होंने ये कहा परमात्मा लाइट है. तो इसीलिए चर्चेस में कैंडल्स जलाया जाता है एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट. परमात्मा के सिग्निफिकेंस के रूप में वो कैंडल्स जलाए जाते हैं. और मुसलमान धर्म में उन्होंने कहा अल्लाह नूर है, नूरे हिलाई. नूर माना प्रकाश है. जब भी वो कभी भी इंसान को या फिर मूर्ति पूजा नहीं करते, अल्लाह को मानते हैं. उन्होंने कहा अल्लाह नूर है. और जब भी वो नमाज पढ़ते हैं तो उनके ऊपर के तरफ वो डायरेक्शन वो बैठते हैं तो वो मक्का के तरफ, लेकिन याद करते हैं अल्लाह को. अल्लाह वो अकबर, वो राजा है. अल्लाह राजा है. तो अल्लाह को याद करते हैं. अल्लाह नूर को याद किया. चाहे नूर कहे चाहे लाइट कहे, वही एक प्रकाश के तरफ वो इशारा कर रहे हैं. और फारसी टेंपल्स में फायर टेंपल है, वो भी फायर को, आग को वो पूजते हैं. वो भी एक प्रकाश है. और यहूदी धर्म में मोसेस ने भी ये कहा कि एक पहाड़ पे उन्होंने बर्निंग बुश को देखा और 10 कमांडमेंट्स उनको प्राप्त किया. तो वहां भी ये पता चलता है कि उन्होंने भी एक परमात्मा को एक प्रकाश के रूप में माना. गुरु नानक जी ने भी यही कहा एक ओंकार निराकार, अकाल मूरत निर्वैर. उन्होंने यही कहा, यही इशारा किया कि एक परमात्मा वो निराकार है, अकाल मूरत है, जिसका कोई मृत्यु नहीं है, निर्वैर है, जिसका कोई वैर नहीं है. है ना? वो ऐसे परमात्मा है, निराकार ज्योति है. और साईं बाबा ने भी यही कहा सबका मालिक एक है. उन्होंने कहा तो अलग अलग धर्म स्थापक आकर के अलग अलग संदेश दिया समय प्रति समय, समाज को जो आवश्यकता थी ऐसे मैसेजेस देते हुए, ये देते हुए, शिक्षाएं देते हुए यही कहा मैं खुदा का पैगंबर हूँ, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, या मैं परमात्मा का बंदा हूँ. तो यही कहा, लेकिन सभी ने एक परमात्मा, चाहे नूर है चाहे प्रकाश है चाहे लाइट है, तो उनके तरफ सब ने इशारा किया. और हिंदू धर्म में बहुत सारे मूर्तियों को हम पूजा करते हैं और उसमें से एक मूर्ति है, वो है शिवलिंगम. और शिवलिंग एक गोलाकार है, परमात्मा ज्योति है, ज्योति को हम पूज नहीं सकते, तो इसीलिए एक लिंगम का आकार देते हुए पूजना शुरू किया. और सभी देवी देवताओं का अपना नाम है, लेकिन शिव जी को कर्तव्यवाचक नाम है. आइदर उनका नाम ईश्वर से अंत होता है या नाथ से अंत होता है. ईश्वर माना परमात्मा, इस पूरे संसार के परमात्मा. नाथ माना मालिक, है ना? केदारनाथ, नागनाथ, सोमनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंगम की महिमा हिंदू धर्म में करते आए हैं. सब कर्तव्यवाचक नाम है. सोमनाथ क्या है? जिसने आकर के सोम रस पिलाया, ज्ञान रूपी सोम रस जिसने पिलाया, समझ दी क्या सही है क्या गलत है. वो तो ज्ञान का सागर है. ज्ञान के सोमरस पिलाने वाला सोमनाथ है. अमरनाथ कौन है? जिसको कोई मृत्यु नहीं है, अमर रहने वाला अमरनाथ. बबुलनाथ, कांटों को फूल बनाने वाला बबुलनाथ. बॉम्बे में है ना एक बबुलनाथ मंदिर. तो कांटों जैसे जो अवगुण भरे आत्माएं, जो कांटों समान है, उनको बदल करके देवता समान, फूल समान बनाने वाला परमात्मा है, वो है शिव. और शिव का यथार्थ अर्थ क्या है? शिव का संस्कृत अर्थ है पॉइंट, बिंदी, और दूसरा अर्थ है वो कल्याणकारी। शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी, तो इनका भी अर्थ है ना, पॉइंट है, तो इसीलिए शिव कहा। क्योंकि जैसे कल हमने देखा सभी आत्माओं का रूप क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे माता पिता को रिजेंबल करते हैं, है ना, तो हम आत्माएं ज्योति बिंदु कैसे हैं, क्यों है, क्योंकि मैं मुझ आत्मा का पिता जो है वो भी एक ज्योति है। लेकिन अंतर क्या है, वो परम आत्मा है लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं गागर हूं वो सागर है, मैं सीमित हूं वो असीम है, मैं लिमिटेड हूं वो अनलिमिटेड है। मुझ आत्मा के मैं अंदर थोड़ा बहुत गुण है लेकिन परमात्मा के अंदर सर्व गुण सागर समान है, अथा है। तो इसीलिए साइज में कोई छोटे बड़े की बात नहीं है लेकिन शक्ति और गुणों में वो अथा और बेहद है। तो इसीलिए शिव को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, शिव है, शिव माना निराकार है, ज्योति है और बहुत सुंदर है। और परमात्मा को याद करने से वो ऐसा नहीं कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, वो असनीय है, वो ऐसे नहीं। जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं उनके जो प्रकाश है बहुत सूदिंग है, अच्छा लगता है, सुंदरम है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन हम यहाँ कहते हैं प्यार से शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाबा माना कोई ऐसे कोई बाबाओं की बात नहीं है। हम अपने पिताओं को क्या कहते हैं, अपने फादर को क्या कहते हैं घर में, भले वो बाहर समाज में कोई मिनिस्टर होंगे, कोई जज होंगे, कोई ऐसे जस्टिस होंगे या बहुत बड़े पोजीशन होंगे समाज में, लेकिन घर में आकर के बच्चे क्या कैसे बुलाएंगे अपने माता पिता को, पापा कहेंगे, डैडी कहेंगे, मॉम कहेंगे, मम्मी कहेंगे, पोजीशन के साथ उनको नहीं बुलाएंगे, है ना, प्यार से कोई पॉप्स कहेंगे, कोई मॉम्स कहेंगे, कोई अच्छे अलग अलग प्यार से अलग अलग शब्दों से वो पुकारते हैं अपने माता पिता को। समाज जो जैसे पुकारते तो ऐसे नहीं बुलाएंगे उनको बच्चे, ऐसे ही यहाँ हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वो प्यार की निशानी है, केवल हम शिव कहेंगे वो दूरी महसूस होता है लेकिन बाबा कहेंगे वो प्यार, वो नजदीक का संबंध हम महसूस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ बाबा शब्द बहुत बार आप सुनते होंगे यहाँ इस कैंपस में, तो इसलिए प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं तो वो एक निराकार के प्रति हम इशारा कर रहे हैं। ये है संपूर्ण समझ परमात्मा के बारे में। तो जब भी पूर्ण जब हम फॉर्म भरते हैं ना परिचय का, तो कुछ चीजें हम भरते हैं, तो परमात्मा के लिए भी अगर संपूर्ण फॉर्म हम देखेंगे, नाम क्या है परमात्मा का, नाम शिव कहे, सदाशिव कहे, सदाशिव भी कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं शिव को, क्योंकि स्वयं उत्पन्न हुए, उनके कोई जन्म मरण नहीं, अजन्मा है, स्वयं उत्पन्न हुए। सदाशिव कहे, जहोवा कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे या वाहेगुरु कहे, लेकिन सभी इशारा उसी एक परमात्मा के प्रति हम इशारा कर रहे हैं। और उनका रूप क्या है, फोटोग्राफ लगाते हैं एप्लीकेशन में, तो रूप क्या है परमात्मा का, वो ज्योति है, लाइट है, नूर है, प्रकाश है, लाइट का स्वरूप है परमात्मा, ज्योति है। और क्वालिफिकेशन क्या है परमात्मा का, जो पैरामीटर्स हमने, पांच पैरामीटर्स हमने देखा, सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सर्व का स्रोत और सर्वधर्म माननीय है परमात्मा। और एड्रेस क्या है परमात्मा का, यहाँ वहां नहीं देखेंगे ना, परमात्मा को कहाँ है, परम धाम में, परवाती पार, परम ब्रह्म, पर ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा है, परम धाम, निर्वाण धाम या हाईएस्ट अबोर्ड जिसको कहते हैं, सातवें आसमान जिसको कहते हैं, वो है परमात्मा का घर। सो सब आत्माओं का घर है। ऑक्यूपेशन क्या है परमात्मा का, वो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा है और दुख हरता सुख करता है। ये दो ऑक्यूपेशन है परमात्मा का, दो कर्तव्य है, वो एक है पतितों को पावन बनाने वाला और दुख हरता सुख करता, वो है ऑक्यूपेशन। तो ये संपूर्ण समझ परमात्मा के बारे में आज के सेशन में हमने देखा। क्या आप सब को, कुछ लोगों के मन के अंदर कुछ प्रश्न होंगे, क्योंकि बहुत कुछ आप पढ़े होंगे, शास्त्रों को पढ़े होंगे, कुछ अलग अलग किताबों को पढ़े होंगे, तो बहुत कुछ आपको कुछ डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत बाजू में रखेंगे और धीरे धीरे सब प्रश्नों का उत्तर आपको अलग अलग सत्र में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी वो प्रश्नों का पिटारा अगर खोलेंगे ना, बहुत सारे उलझन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप अनुभव करना शुरू करें, अनुभव प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो अनुभव करना शुरू करेंगे, अनुभव करते करते आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, समझ मिलती जाएगी और सही क्या है, गलत क्या है, वो फिर सही गलत की बात नहीं है, लेकिन थोड़े समय में, थोड़े पुरुषार्थ में ज्यादा हमें रिजल्ट की बात है, डायरेक्ट कनेक्शन की बात है यहाँ। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप अनुभव पाते जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिलता जाएगा। उस प्रैक्टिस के लिए अभी क्या करना है, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो पता चलेगा कि जब हम कोई सॉल्व करते हैं ना, सम्स को सॉल्व जब हम करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए, कोई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू बी, तो अज्यूम करते हुए उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जब हम लास्ट में रिजल्ट मिल जाता है, जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाने के बाद हम कहेंगे यस ए इज इक्वल टू बी, वो अजम्पशन जो था हमारा वो सही हो गया क्योंकि हमें रिजल्ट मिल गया है। तो अभी जो आपको समय यहाँ, अभी जो ज्ञान दिया गया अभी, तो अज्यूम करें, बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन सभी को बाजू में रख करके जो यहाँ सिखाया अभी कि परमात्मा एक ज्योति है, मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, भले आपको इसमें निश्चय है या नहीं है वो अलग बात है, जस्ट अज्यूम करिए, जस्ट कीप योर माइंड एंड हार्ट ओपन और अज्यूम करते हुए उसको अनुभव करने की कोशिश करें। तो जब अनुभव आप करेंगे, वो शांति का, प्रेम का, शक्ति का अनुभव आप करते जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिकली वो समझ में आएगा यस ए इज इक्वल टू बी, मैं आत्मा ज्योति हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है और परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए मुझे जन्मों जन्मों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, इतने अखंड नवधा भक्ति करने की जरूरत नहीं है, केवल प्यार से विचार किया, प्यार से उनको याद किया, कनेक्शन जुट गया, वो जन्मों जन्मों तक हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है परमात्मा से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा पिता है, पिता को याद करने के लिए, पिता से मिलने के लिए मुझे एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। प्यार से याद किया, कनेक्शन जुट गया, जुट जाएगा। ठीक है, भले अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभ्यास नहीं किया है, लेकिन अभ्यास करते करते वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुट जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। चलिए अभी हम थोड़े समय के लिए अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन करेंगे अभी, परमात्मा को याद करने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन करते समय फिजिकल पोजीशन, पोश्चर इरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। आप सुखासन में बैठ सकते तो ठीक है, लेकिन कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो सुखासन में बैठना मुश्किल होगा, तो इसलिए कोई बात नहीं, पूरा ऐसे ही भी टांगे नीचे डाल के भी बैठ सकते हैं, लेकिन क्रॉस लेग्स ना हो, पूरे अलग अलग पैर हो, ताकि फिर स्ट्रेट हो पोश्चर, बैक बोन भी स्ट्रेट। ये हुआ फिजिकल पोश्चर। और मन में क्या सोचना है, मन में मन की शक्तियों को यूज करेंगे। मन की शक्तियां क्या है, एक है विचार करने की शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग, उन विचारों को पॉजिटिविटी के तरफ ले जाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मा के खुद के बारे में सोचेंगे, परमात्मा के बारे में सोचेंगे, तो सोच श्रेष्ठ सोच के तरफ हम ले जाएंगे, स्वचिंतन और परमात्म चिंतन के तरफ अपने मन को ले जाएंगे। और दूसरी शक्ति क्या है, वो है बुद्धि की शक्ति, वो है विजुलाइजेशन की शक्ति। यहां बैठे बैठे अगर आपको कहे सागर किनारा पहुंच जाए, आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप आपके बुद्धि के आंख से आप उसको देख सकते हैं। ये क्षमता हर एक व्यक्ति के अंदर है। विजुलाइजेशन की शक्ति को यूज करते हुए जब हम ये कहेंगे कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं, सोचने के साथ साथ अब बुद्धि से देखने के भी कोशिश करेंगे कि हाँ मैं अपने ब्रेन के बीचों बीच में आत्मा चमक रही हूं, उसको देखने की कोशिश करें तीसरे आंख से, बुद्धि रूपी आंख से वो देखे, विजुलाइज करें। और तीसरी बात है फील करना, महसूस करना। जब हम कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वो शांति को महसूस करने की कोशिश करेंगे, केवल सोचे नहीं लेकिन महसूस करें, फील करें। जैसे अगर आपको कहे आप विजुलाइज करें कि नींबू खा रहे हैं, आप एक नींबू हाथ में है, आप नींबू ऐसे चबा रहे हैं, तो क्या होगा, मुख में सलाइवा क्रिएट हो जाता है ना। दिस इज द पावर ऑफ विजुलाइजेशन एंड फीलिंग, है ना, वो फील करना कि हाँ मैं सचमुच शांत स्वरूप आत्मा हूं। और ये तीन शक्तियों को यूज करते हुए अभी हम मेडिटेशन करेंगे, विचार की शक्ति, विजुलाइजेशन की शक्ति और फिर महसूस करने की शक्ति। फिर अपने आंखों को आप खुला रखेंगे, बंद ना रखें, क्योंकि बंद रखेंगे तो वो बहुत जल्दी मन भटक जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना अभी, तो इसलिए यहां हमेशा हम सजेस्ट करते हैं ओपन आई मेडिटेशन। आंखों को खुला रखेंगे लेकिन पूर्ण खुला नहीं, वाइड ओपन नहीं, हाफ ओपन। जैसे योगियों का चित्र जब देखते हैं तो हमेशा उनके आंख हाफ ओपन रहता है, हाफ ओपन, और आंखों को एक जगह पर टिका देंगे। जस्ट स्टेबलाइज योर आईज ऑन समथिंग, कोई भी एक वस्तु पर आंखों की लेवल में, चाहे ताकि फिर गर्दन को भी ज्यादा प्रेशर ना हो, तो एक लेवल में एक आंखों को टिकाएं। आंखों को टिकाने से, आंखों को स्थिर रखने से मन को एकाग्र कर सकते हैं। अगर आंखें इधर उधर देख रहे हैं, इफ यू हैव अ रोविंग आईज, इधर उधर देख रहे हैं, तो फिर आंख मन स्थिर नहीं हो सकता। तो इसलिए आंखों को स्थिर रखेंगे, लेकिन फोकस जहां देख रहे हैं वहां फोकस नहीं, फोकस पूरा यहां अंदर के तरफ, फोकस अंदर, आंखों को देखते हुए नहीं देख रहे, बस एक लेवल पर स्थिर है आंख, बस। ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको मुश्किल लग रहा है, आंखें खुला रखना, बंद रखना, तो भले आप बंद रख सकते हैं, बहुत मुश्किल लगता है तो, लेकिन पूरा आपका फोकस रहना चाहिए, एकाग्रता, मन भटकना नहीं चाहिए इधर उधर। अपने मन को बता दे कि अगले 5-10 मिनट पूरी तरह एकाग्र हो जाएंगे, जो भी विचार आ रहे हैं उनको फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए आसपास के वातावरण से थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाएंगे तो टिकाए नहीं पीछे। अगर रेस्ट होकर के बैठेंगे ना, वो कुर्सियां थोड़े से आराम से हैं, रिलैक्सिंग है कुर्सियां यहां ज्यादा, थोड़ा नींद भी आ सकता है। कीप योर बैक स्ट्रेट, अलर्ट, बैक रेस्ट ना करें, ताकि फिर पूरा लाभ ले सकते हैं अगले 5 मिनट। आसपास के वातावरण से आवाजों से अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करें। और भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। मन के स्क्रीन पर अपने आप को देखने की कोशिश करें। एक चमकता हुआ अजब सितारा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, अपने आप को देखने की कोशिश करें। एक प्रकाश का पुंज, श्रेष्ठ आत्मा मैं हूं, भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर मैं आत्मा इस शरीर के हर कर्मेंद्रियों को नियंत्रण कर रही हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जिसको धारण कर मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। लेकिन मैं आत्मा मालिक हूं, राजा हूं, मास्टर हूं। भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर इन आंखों की खिड़कियों को, आंखों की खिड़कियों के द्वारा बाहरी जगत को देख रही हूं। देखने वाली मैं आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूं। सुनने वाली मैं आत्मा, मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूं। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूं। मैं मास्टर हूं, राजा हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं। पवित्र हूं। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति हूं, अपने पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। मेरे प्रिय परमात्मा से मिलने के लिए मैं अपनी मन और बुद्धि को के द्वारा सूर्य चांद से भी पार परम धाम पहुंचती हूं। जो मुझ आत्मा का निजी धाम है, परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम है। जो मुझ परमात्मा का भी घर है, वहां मेरे जैसे अनेक अनेक आत्माओं को देख रही हूं, जगमगाती हुई ज्योति। उनमें से एक अति प्रकाशमय ज्योति वो है मेरे अति प्रिय परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा का पिता, टीचर, सद्गुरु, रूप में बिंदु लेकिन गुण और शक्तियों में सिंधु है, सागर समान है, उनके सानिध्य में जाते ही मैं आत्मा उनके गुणों को अनुभव कर रही हूं। शांति के सागर उनसे, शांति की लहरें, शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा शांति की किरणों को अब्सॉर्ब कर रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ, अपने आप में भरती जा रही हूँ। मैं शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं अपनी सारी चिंताएं, भय, दुख, दर्द परमात्मा को सौंप रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे पिता है, मुझे गाइड करते हैं। मुझ आत्मा के अंदर शक्ति भरते हैं। सब बोझ मैं परमात्मा को दे रही हूं ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं, हल्के हो जाऊं, लाइट महसूस कर रही हूं। क्योंकि मुझे विश्वास है सब कुछ लेकर के सुख प्रदान करने वाले परमात्मा है, सब दुखों को हरने वाला मेरा पिता है। तूफानों में भी हाथ पकड़कर रास्ता बताने वाला मेरा पिता परमात्मा है। इस अटूट निश्चय के साथ उनके असीम प्रेम की अनुभूति कर रही हूं। निस्वार्थ प्यार की अनुभूति कर रही हूं। अपने अंदर परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार भरते हुए पुनः इस कर्म क्षेत्र पर आकर अपना कर्म करना शुरू करती हूँ, लेकिन निरंतर उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ, निरंतर उस पिता से मैं ले रही हूँ और संसार को दे रही हूँ। जो भी मुझ आत्मा को चाहिए, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, सब कुछ मैं परमात्मा से ले रही हूँ और इस संसार को दे रही हूँ, ताकि सब आत्माएं भी उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करें और ये संसार बेहतर बन जाए। ओम शांति।